रेडियो मानोरचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर नीलांजना हु इज एन एजुकेशनिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
धन्यवाद
जी। आज डॉक्टर नीलांजना हम बात करने वाले हैं जीवन के बारे में, यानी इस लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका जीवन का बहुत एक गहरा अनुभव है, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं आपने अपने इस जीवन में, तो क्या लगता है कि ये लाइफ बेसिकली है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ?
देखो आंचल, जिंदगी के जितने अधिक आपको अनुभव मिलते जाते हैं ना, उतने ही आप अनुभवहीन होते जाते हैं।
जी,
लोग सोचते हैं कि एक्सपीरियंस जो है वो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस जो है व्यक्ति को मूर्ख भी बनाता है और बहुत सारे पछतावे से भी भर देता है।
जी,
उसे लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि जो ज़्यादा अनुभव संपन्न लोग हैं वे और ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। उनको नहीं मालूम है कि उन्होंने ज़िंदगी को सही ढंग से जिया, या उनको ये भी नहीं मालूम है कि जिंदगी का गणित गलत कब हो गया।
जी,
उनको ये भी नहीं मालूम है कि जिस तरह आज हम देखते हैं कि छोटे बच्चे इतने ज़्यादा भावनात्मक रूप से इतने सजग होते हैं, इतने अधिक प्रतिबद्ध होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है हमारी पीढ़ी के लोग भावनात्मक रूप से मूर्खता में जीवन बिताया उन्होंने।
जी,
इसमें बहुत बड़ा जो दोषी है वो है हमारा साहित्य और हमारे बुजुर्गों द्वारा दिए गए संस्कार।
जी,
जिसमें आपको एक प्रोग्राम्ड व्यक्ति की तरह बनाया जाता है।
जी, यहाँ पर नीलांजना जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरह के संस्कार की आप बात कर रहे हैं, या किस तरह की आप कल्चर की बात कर रहे हैं जो इनकलकेट किए गए हैं आगे वाली जनरेशन में, जिसकी वजह से उन्हें मूर्ख आप कह रहे हैं।
जैसे अभी मेरी एक 26 साल की एक बड़ी प्यारी रेडियो अनाउंसर से बात हुई।
जी,
मैंने उससे पूछा कि जिंदगी का तुम्हारे लिए क्या मतलब है। उसने कहा कि मेरे लिए मतलब है कि मैं अपनी आत्मा को पहचानूं, टू सर्च माई सोल।
जी,
26 साल की लड़की ये जवाब दे रही है मुझे। और जब हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए जो जिंदगी का मकसद बताया जाता था वो ये था कि शादी कर लो और जाके वहाँ सास ससुर की सेवा करो।
जी,
और अपने बारे में मत सोचो, बस देने के बारे में सोचो, त्याग ही तुम्हारा जीवन है। अपने बारे में सोचने की कोई शिक्षा ही नहीं देता था। ना तो अपने इमोशंस के बारे में सोचो, ना अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचना ही नहीं है। और ये जब शिक्षा लेकर के लोग बड़े होते थे तो वो धीरे धीरे अपने बारे में ईमानदारी से सोचना, अपनी भावनाओं को ईमानदारी से महसूस करना भी भूल जाते थे। और जब बहुत वक्त बीत जाता था तो वो सोचते थे कि आखिर हमने जिया ही क्या।
जी,
तो ये मुझे ऐसा लगता है।
जी,
और दूसरी बात ये है कि कौन सी चीजें आपको एनरिच कर रही हैं, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, आप अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में या जो धरती है हमारी, इसमें भी तो आप एक यात्रा पर ही आए हुए हैं। थोड़े समय आपको रहना है, थोड़े समय आपको घूमना है, आपने इस यात्रा को किस तरह बिताना है इसकी भी कोई सही ढंग की शिक्षा नहीं दी जा रही है, ना तो हमारे धर्म ग्रंथों द्वारा और ना ही हमारे सामाजिक परंपराओं द्वारा।
जी,
ऐसा मुझे महसूस होता है, ये मेरी निजी राय है।
जी मैम, आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली जीवन के बारे में, और आपने कहा कि इस जीवन यात्रा को पूर्ण करना बहुत आवश्यक है, तो जानना चाहूंगी सबसे पहले ये जीवन यात्रा क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है इस जीवन में?
देखिए, हर सोल जो धरती पर आता है,
जी,
जब वो सोल धरती पर आता है तो वो एक मुक्त प्राणी होता है। उसे इस धरती को देखने, यहाँ के सौंदर्य को निरखने परखने के लिए भेजा गया है।
जी,
लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें वो सोल जकड़ जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स कहता था कि हम स्वतंत्र पैदा हुए हैं लेकिन हम यहाँ हर तरफ जंजीरों से बंधे हुए हैं।
बिल्कुल सही।
तो जो जंजीरें हैं वो जंजीरें उस सोल को आत्मा नहीं रहने देती हैं। फिर वो क्या बन जाता है, यहाँ की पैट्रियार्की या यहाँ के सोशल सिस्टम का एक पुर्जा बन जाता है, और उस पुर्जे के रूप में वो ये भूल जाता है कि उसका वास्तविक मकसद क्या था इस धरती पर आने का।
जी,
दरअसल वो किसी और के एजेंडा के अनुसार काम करना शुरू करता है, चाहे वो उसका परिवार हो या उसका समाज हो, उस एजेंडा में वो काम करना शुरू कर देता है और वो भूल जाता है कि उसे खुद क्या करना है। आज हम देखते हैं, आप अगर 50, 40 या 60 साल की महिलाओं और पुरुषों से बात करें, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि उन्होंने ये कैरियर या ये जीवन क्यों अपनाया, क्योंकि उनके परिवार ने उनके लिए ये तजवीज़ की थी।
बिल्कुल सही।
तो उन्होंने खुद अपने लिए क्या सोचा?
कुछ भी नहीं।
खुद भी नहीं सोचा,
कुछ भी नहीं सोचा।
तो उन्होंने जीवन बिता दिया, उनकी यात्रा पूरी होने वाली है इस धरती पर, लेकिन उनके मन में फिर दुनिया भर के सवाल उठते हैं कि फिर मैंने किया क्या, फिर तो मैंने खो दिया।
जी,
जैसे कबीरदास कहते थे
वो भी किसी और के हाथों खो
किसी
दिया।
और के हाथों, अपनी गलती से नहीं अपना जीवन बर्बाद किया। कबीरदास कहते थे ना, रात गवाया सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए।
जी,
मैंने देखा है जो हमारा सबसे ज्यादा क्रिएटिव ईयर है, जो हमारा सबसे ज्यादा रचनात्मक काल है, उस काल में हम क्या करते हैं, क्योंकि वो माँ कह रही है इसलिए खाना बनाना सीखो, क्योंकि दादी कह रही है इसलिए कढ़ाई करना सीखो। अरे वो तुम खुद क्या चाहते हो? मैं खाली महिलाओं की बात नहीं कर रही, मैं पुरुष भी इसी व्यवस्था के शिकार हैं। आप ये मत समझिएगा कि पैट्रियार्की है तो उसमें सफरर सिर्फ महिलाएं हैं, पुरुष भी उसी पैट्रियार्की का शिकार हैं। और दरअसल पैट्रियार्की जो है ना, वो हमारे यहाँ एक तरह की एब्सोल्यूट पैट्रियार्की है।
बिल्कुल,
निरंकुश पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें बेटे को भी ये हक नहीं कि वो ये सोचे कि मैं किससे विवाह करूं, मैं क्या कैरियर चुनूं, या मुझे किस तरह से जीना है, मेरी जीवन शैली क्या होनी चाहिए। किसी को, किसी इंसान को हक ही नहीं है।
जी।
उसे वही रास्ता मिला है जिस पर, उस तयशुदा रास्ते पर उसे चलना है,
जो उसके पूर्वज उसके लिए तय करते
हैं, जो उसके बड़े उसके लिए तय कर गए हैं, या फिर जो पीयर प्रेशर उसे दबाव डाल रहा है। एक पीयर प्रेशर भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ परिवार की एक भूमिका है, पीयर प्रेशर उस पर दबाव डाल रहा है कि देखो उसे देखो, वो मल्टीनेशनल में इतना कमा रहा है, अरे तुम्हारी क्या तनख्वाह है, अरे उसको देखो उसने ये कर लिया।
कहीं ना कहीं
निरंतर इस तुलना से एक आदमी, एक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो इतना थक जाता है कि उसके अपने सोचने समझने की ताकत धीरे धीरे कम हो जाती है, या वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाए,
या हम ये भी कह सकते हैं कि वो इस चीज का इतना आदि हो जाता है कि जो दूसरे कहते हैं वो सिर्फ वही करता है। अपने लिए क्या करना है, अपने लिए क्या सोचना है, इस चीज की जो क्षमता है उसके अंदर वो खत्म हो जाती है।
उसका सारा इनिशिएटिव खत्म कर दिया जाता है।
जी।
और जैसे हम लोग छोटे से बच्चे को ही कहते हैं, कोई आया, अरे इनको प्रणाम नहीं किया, इनको ऐसे नहीं किया, पैर छू के प्रणाम करो, थोड़ी देर के बाद उसको लगता है कि, हालांकि ये हमारे सामाजिक शिष्टाचार और ये सब का एक प्रोग्रामिंग का एक हिस्सा है, लेकिन हमको लगता है कुछ हमारे यहाँ ओवरडू कर रहे हैं हम लोग।
जी जी जी,
इतना ज्यादा ओवरडू कर लेते हैं कि सचमुच में इनिशिएटिव खत्म होता जाता है।
बिल्कुल, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो उसका कोई ना कोई एक मकसद है, एक पीछे पर्पस है, लेकिन हम वो पर्पस भूल कर हम वो चीजें करने लगते हैं जो ये समाज हमसे करवाता है। और यही बातें आज है निरांजना हमें रियलाइज करवा रही हैं। डॉक्टर निरांजना, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि हम एक किस तरह से जीवन जी रहे हैं और हमें किस तरह से जीना चाहिए।
देखो आंचल, अब तुमने ये बात कही, अभी तुमने अभी कहा था हमें एक मानव शरीर मिला है, हमने ये देखा है अपने शरीर की संरचना के बारे में भी हम हमेशा शर्मिंदा रहते हैं। बचपन से हमें कहता ये गंदी बात है, ये ऐसे मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी शारीरिक रचना से ही शर्मिंदा हैं, जो कि हमें ईश्वर ने दिया है, जो बहुत ही अनुपम उपहार है, और उसको भी हम नैतिकता के मापदंडों में बांध करके रखते हैं, उसका क्या नतीजा निकलता है? आज अक्सर आप लोग चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात करते हैं।
बिल्कुल,
इतना ज्यादा बच्चों को डरा के रखा जाता है और बड़ों का सम्मान हर हालत में करने की बात की जाती है, कि ये तो आपको भी पता है कि अधिकतर चाइल्ड अब्यूज इमीडिएट फैमिली मेंबर द्वारा किए जाते हैं, और बच्चा डर के मारे अपनी माँ को भी नहीं बताता है।
फैक्ट।
तो ये एक इतना बड़ा अत्याचार, इतनी बड़ी यातना वो छोटा बच्चा झेल रहा है, और हमारा संस्कार और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए ये चल रहा है, ये कितना बड़ा फार्स है। ये सब कुछ उसकी इस पूरी धरती पर की उस पूरी जीवन यात्रा को, उस बच्चे को हमेशा के लिए आहत कर देता है, हमेशा के लिए उसे तोड़ देता है। और चुप रहो परिवार की इज्जत के नाम पे चुप रहो, ये सिखाया जाता है बच्चे को। बच्चे के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो बता दे कि ये फलाने दादाजी या फलाने मामा जी या फलाने चाचा जी या जो भी हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो इस चाइल्ड अब्यूज का शिकार है, या ये फलाना बड़ा पुराना नौकर ये सब कुछ कर रहे हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच इस तरह का कोई संवाद नहीं है कि वो अपनी यातना को बता सके। तो ये जो संवादहीनता की जो स्थिति है, ये बच्चे को इतना तोड़ती है, किसी भी व्यक्ति को इतना अधिक तोड़ देती है कि आगे का उसकी सारी जो जीवन यात्रा है वो एक अपाहिज की जीवन यात्रा बन जाती है।
जी, और ये हमारे जीवन का मकसद नहीं
है
जो हम जी रहे हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर नीलांजना, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी यात्रा के बारे में। आपने कई बार इस शो में अभी तक जीवन यात्रा का जो है नाम लिया, लेकिन जीवन में यात्रा का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है ये मैं जानना चाहूंगी।
देखो, जो यात्रा जिसको हम कहते हैं वो एक तरह से अपने खुद की तलाश है, क्योंकि जब आप अपने परिवार के साथ जाते हैं तो वो यात्रा आपको एक, अभी हमने टीवी के एड में पढ़ा था कि जब आप दूर जाते हैं अपनों के साथ तो अपनों के ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। तो मुझे ये बात बड़ी पसंद आई, बहुत ज्यादा पसंद आई। और सचमुच में हम जब उस माहौल से, जब हमारा वो चेंज ऑफ सीन होता है, तो हम उसी व्यक्ति को एक नए प्राकृतिक परिवेश में दूसरी नजर से देखते हैं। वो घर में जो हमारे जो बंदिशें हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं इसको सोचो तुम, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारा मन भी तो उन्मुक्त होता है। हम वो माँ नहीं रह जाते हैं जो हम घर में थे, हम वो पिता नहीं रह जाते हैं जो हम घर में थे। इस वक्त हम नेचर के सामने प्रकृति का साक्षात्कार करते हुए प्रकृति के बच्चे बन जाते हैं, और हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको एक मित्रवत देखते हैं, हम उनको एक दूसरी नज़र से देखते हैं। हमारी संवाद जो है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बढ़ जाता है। और इस प्रकृति के विराट रूप के बीच में हम जब रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये एक जो चीज़ हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है, एक ज़माने में तीर्थ यात्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और तीर्थ यात्राओं का एक मकसद था कि आप अपने घर के उससे निकलें और उसके बाद आप प्रकृति के आगे जब आप उसके विराट का दर्शन करेंगे तो आपको अपनी छोटी छोटी ट्रिवियल बातें जो हैं वो महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी। एक तो ये था, और इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब आप अकेले यात्राएं करते हैं तब भी आप एक प्रकार से अपने स्व से साक्षात्कार करते हैं, और वो आपको एक बेहतर इंसान बनाता है।
बिल्कुल सही बात है, जब हम अकेले यात्रा पर जाते हैं तो हम अपने स्व से हमारा मिलन हो जाता है। रेडियो मानव रचना 107.8 पर आप हैं आंचल के साथ, और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर नीलांजना, जो एक एजुकेशनिस्ट है, और साथ ही बहुत खूबसूरत आज बातें कर रही है हमारे साथ लाइफ के बारे में। ये जीवन क्या है, जीवन का मकसद क्या है, किस तरह से हम जीवन जी रहे हैं और किस तरह से हमें ये जीवन जीना चाहिए, ये सारी बातें हमने करी डॉक्टर नीलांजना से। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यात्रा के बारे में। जी हाँ, वो यात्रा जो हम अपने जीवन में करते हैं। तो ये बताइए डॉक्टर नीलांजना, जितनी भी यात्राएं हम अपने जीवन भर में करते हैं, वो यात्राएं हमें क्या क्या सिखाती हैं हमारे जीवन में? क्या हमारे जीवन जीने का दृष्टिकोण भी बदल जाता है?
हाँ, बदलता है, क्योंकि आप प्रकृति का साक्षात्कार करते हैं, आप अपने जीवन में बहुत से विपरीत परिस्थितियों का साक्षात्कार करते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, आप घर की सुरक्षा से दूर एक असुरक्षा के वातावरण में रहते हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में आप ग्रो करते हैं, आप विकसित होते हैं। एक और बात मैं महसूस करती हूँ कि शिक्षा का इससे बेहतर साधन और कुछ नहीं है। और बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट जो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने क्यों कहा था कि क्लासरूम से निकालो बच्चों को, प्रकृति के बीच में पढ़ने का मौका दो। तो इन सब बातों के पीछे एक तथ्य था, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हम लोग कुछ चीज़ें लर्न करते हैं फिर दोबारा से हम उनको अनलर्न कर लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए। और एक बात और मैं महसूस करती हूँ कि माता पिता और बच्चे आजकल, वही जो मैंने कहा था, पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एग्ज़ाम और तरह तरह के स्किल सीखने की होड़ में यात्रा को तवज्जो देना हम कम कर चुके हैं। और एक चीज़ और मैं महसूस करती हूँ कि जो यात्राएं हैं, या अब उसका एक कमर्शियल, एक उसका व्यावसायिक चेहरा बन गया है पर्यटन उद्योग और उससे जुड़े जुड़े बड़े महंगे टूर पैकेजेस, ये सब चीज़ें जो आ गई हैं, एक तरफ से ये स्टेटस सिंबल तो बन गया है और इससे शायद कुछ सीखा भी जाता है, लेकिन इससे एक जुड़ी हुई बात और भी है कि यह आपको कहीं कहीं उन्मुक्त करने के बजाय और अधिक संकीर्ण बना रही है, क्योंकि आप यात्राएं कम करते हैं, उससे जुड़े हुए स्टेटस सिंबल के आतंक में ज्यादा रहते हैं।
जी, या हम अगर सरल भाषा में कहें तो शोशेबाजी आजकल ज्यादा हो रही है,
क्योंकि यात्राओं का तो मतलब ये भी है। मुझे याद है, मैं 10 साल की थी उस वक्त, मेरा एग्जाम भी नज़दीक था, तो मेरी माँ अपने पिता के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा का प्रोग्राम बना, तो माँ ने कहा मैं तुम्हें जरूर लेके जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। माँ ने कहा नहीं, एक बच्चा तो मेरे साथ जरूर जाएगा। वो मुझे लेके गई, और आज तक मैं माँ के इस निर्णय की हमेशा कृतज्ञ रहूँगी, क्योंकि स्कूल में रह के हम वो सब नहीं सीख पाते जो मैंने उस 20 दिन की यात्रा में सीखा, किस तरह हम लोग हनुमान चट्टी गए। उस वक्त वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ तक मोटरेबल रोड नहीं थी और हम लोग घोड़े और टट्टुओं पे बैठ के गए, और वो जो मैंने माहौल देखा और जो महसूस किया वो एक प्रकार से अतुलनीय है। उसकी तुलना नहीं की जा सकती किसी भी क्लासरूम की पढ़ाई से।
जी, यानी कि जब आप इन चार दीवारी से बाहर निकलते हैं, आप अपनी जर्नी के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपको शायद उस चार दीवारी में सीखने को ना मिले।
और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि यात्राओं का इतना ज़बरदस्त कमर्शियल चेहरा बनता जा रहा है कि इसने सारे हमारे इकोसिस्टम को तबाह करके रख दिया है। अभी आपने देखा कितना जबरदस्त उत्तराखंड में जो कुछ बर्बादी आई, उसका कारण क्या था कि एक दिन में वहां इतनी हजारों गाड़ियां आ जाती हैं, इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं, सारा पहाड़ बिल्कुल हिल गया। जबकि होना ये चाहिए कि इस जैसे हम जब गए थे बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो मुझे याद है हनुमान चट्टी के बाद सब कुछ पैदल था, वहां फिर कोई वाइब्रेशन नहीं था, कोई मोटर गाड़ियां और ये सब नहीं था, जो कुछ भी था घोड़े और पिट्ठुओं से जाता था। तो उससे ये होता था कि पहाड़ अपनी सुरक्षित रहते थे। और यात्राओं को यदि हमें करना भी है तो हम जितना अधिक नैसर्गिक रूप से करें, जितना प्राकृतिक रूप से करें, ये ना चाहें कि हर जगह बहुत अधिक 5 सितारा सुविधाएं मिलती रहें। अगर ये सब कुछ होता रहेगा तो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता रहेगा, आगे की पीढ़ी के लिए हम कोई नेचर बचा के ही नहीं रख पाएंगे।
बिल्कुल,
आप जानती हैं ये जो गंगोत्री का है, गोमुख है, वो धीरे धीरे खिसकता जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन आ गया, इतना ज्यादा निर्माण हो गया, इतनी ज्यादा धर्मशालाएं और होटल बन चुके हैं उन सारी जगहों पे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को देखते हुए सरकारी नीतियां भी इस तरह की बने ताकि हमारा जो नेचर है, जो हमें सचमुच बहुत सिखाता है, जो हमारा सबसे बड़ा एजुकेशनिस्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है, वो बरकरार रहे और हमारी यात्राएं अहंकार
नेचर के करीब हो।
अहंकार की यात्रा नहीं रहे बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्राएं रहे।
बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। जो भी हमारी यात्रा रहे वो हमारी आत्म साक्षात्कार की तरफ रहे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन नीलांजना जी, इस वक्त मैं चाहूंगी आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि जीवन की यात्रा जो है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए, यानी कि अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करना चाहिए।
देखो, सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि टेक योर सेल्फ सीरियसली, अपने आप को गंभीरता से लो। और एक बहुत पहले मैंने एक फिल्मी गीत सुना था, पता नहीं शायद कल हो ना हो का था, कि जितनी है खुशियाँ सब ढूंढ ढूंढ के लाओ, तेरी डोली के संग कर दूँ सारी रे, ऐसे करके था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब जो मुगालता है कि कोई और आपकी खुशियाँ ढूंढ करके आपकी डोली के साथ करेगा, कोई और आपको खुशी देगा, ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। अपनी खुशी आपको खुद ही तलाश करनी है।
जी,
और अपनी खुशी तलाश करने के लिए ये ज़रूरी है कि बारिश में भीगो, जब टहलने का मन हो कहीं भी हरियाली में चले जाओ। यात्रा का मतलब ये नहीं कि आप कहीं दूर ही चले जाएं, लेकिन आप जहां भी चले जाएं आप अपने आप के साथ रहें। और इस तरह आप अपनी बाहर की यात्रा के साथ अपनी अंतर यात्रा भी करेंगे। मुझे याद है हम लोग बचपन में तो जैसी बारिश होती थी तो कोई बच्चा कमरे में बैठता ही नहीं था, सारे सारे आंगन में निकल पड़ते थे, सब नहाते थे। अब मैं देखती हूँ बच्चों में बारिश को लेकर ऐसा कुछ उत्साह नहीं रहा।
जी,
और जब अब तो शायद इंद्रधनुष दिखना भी बंद हो गया, हमारे बचपन में तो बहुत दिखता था, शायद पॉल्यूशन का ये असर है, अक्सर कर इंद्रधनुष निकलता था और सब छत पर जमा हो जाते थे। तो नेचर को अपने अंदर तक उतारना, क्योंकि हम लोग भी तो उसी नेचर का हिस्सा हैं, ये अपनी जीवन यात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने आप को हमेशा गंभीरता से लो, खुद की खुशियों को बहुत ज़्यादा महत्व दो। और एक बात याद रखना कि तुम सबों को हर वक्त खुश नहीं कर सकते हो, इसलिए खुद को खुश करने पर ज़रूर ध्यान दो।
जी, डॉक्टर नीलांजना जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया कि जहाँ पर भी जाइए बस खुद के साथ रहिए, खुद के साथ समय बिताएं और वो करिए जो आपको खुद को पसंद है, चाहे वो बारिश में भीगना हो या फिर पेंट करना या फिर गाने गाना या फिर डांस करना, जो आपको पसंद हो वो करिए, वो नहीं जो आसपास लोग आपके चाहते हैं।
आंचल ओशो ने कहा था कि हर व्यक्ति के गले में एक गीत छुपा बैठा है और हर व्यक्ति के पैरों में एक नृत्य छुपा बैठा है। हम उस गीत और उस नृत्य की तलाश करें तो हम अपने आप को जरूर पा लेंगे।
जरूर,
ये मैं बड़ा महसूस करती हूँ और कई लोगों की तलाश शायद पूरी हो जाए इस गीत और नृत्य को खोजने में, तो इस बात को जरूर याद रखना चाहिए।
बिल्कुल, आई होप कि आपको भी अपनी तलाश खुद हो जाएगी। वी आर अ लेटर रिटन नॉट विद अ पेन एंड इंक बट विद द स्पिरिट ऑफ लिविंग गॉड। वेल, इन्हीं वर्ड्स के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही इतनी खूबसूरत बातें आपने हमारे लिसनर्स साथ शेयर करी। थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू।
इसी के साथ मुझे यानी अपनी इस होस्ट आंचल को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। फील गुड, फील लाइफ।